ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की मुरली, ब्राह्मणों को क्या परहेज करनी चाहिए उस पर ही सारी मुरली है। हम पहले शूद्र थे तो कुछ भी करते थे, कोई नियम मर्यादाएं कुछ भी नहीं थी, धारणाएं कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमारे आगे कई नियम और मर्यादाएं रखते हैं, जिन नियमों पर चलने से ही हम सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं। नहीं तो अगर नियमों पर नहीं चलते, धारणा नहीं करते, तो फिर ब्राह्मण काहे के। तो कई प्रकार के नियम बाबा बताते हैं। सबसे पहला नियम तो अन्न की शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। फिर संग की शुद्धि, फिर मन की भी शुद्धि। ये तो संग और अन्न तो बाहर का हुआ, लेकिन अंदर की भी शुद्धि। तो वो सारी शुद्धि जो बाबा बताते हैं, वो अगर नहीं है तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कहलाने के लायक ही नहीं है। तो आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है। बहुत ध्यान से सभी सुनेंगे और अपने से लगाएंगे, क्योंकि कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं ना मन में। अन्न के बारे में भी प्रश्न उठते हैं, कई बातें हैं। तो आज बाबा ने सबका उत्तर दिया है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 17/6/2025 है। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो क्या करो? अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। ये तो बहुत बड़ी परहेज है, इसमें कई विघ्न आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उन विघ्नों को जीतो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अब यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो? ब्राह्मण बने और ये प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाती है। कौन सी प्रैक्टिस? तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास। उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तन कैसे दुरुस्त रहेगा, मन कैसे दुरुस्त रहेगा, बाबा कहते उसकी तुम प्रैक्टिस यहीं से करते हो। तो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। पहले क्या कैसे करते हो? तुम दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी तुम्हें देनी है। हा? तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, लेकिन हठयोग की बात नहीं है, हठयोग नहीं करना यहाँ पर। दधीची ऋषि माफिक हमें यज्ञ की सेवा, हम हड्डियां लगानी है। अपना शरीर कमजोर भी नहीं करना है, क्योंकि भोजन की परहेज करनी है तो कई बार नहीं मिलता सही भोजन, शुद्ध आहार नहीं मिलता, कई बातें होती है। तो अपना शरीर कमजोर भी नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां से ही करनी है। तन और मन दोनों दुरुस्त करते हो ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट्स तरफ देखते हैं, टीचर सब तरफ देखती है, कौन झुटके तो नहीं खा रहा है, कोई बासी तो नहीं दे रहा है, कोई की बुद्धि यहाँ वहाँ तो नहीं जा रही है, सब ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि जाती है ना टीचर की। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं, गुलाब का फूल कहाँ है, अब बाबा यहाँ यहाँ क्या देखते हैं, गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, ये भी बगीचा है परंतु नंबर वार तो है ही, सब फूल नंबर वार है। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन जोत होती है, गुलाब का फूल तो देखने में भी सुंदर, रूप रंग गंध रस सब कुछ है, रतन जोत तो थोड़ा छोटा सा है तो कई बार छिप भी जाता है। तो बाबा कहते हैं तो बाजू में रतन जोत है एक जगह, एक में यहाँ फूल बैठा है गुलाब का, साथ में रतन जोत भी बैठा है, कहाँ तक कहाँ कहाँ अक का भी देखता हूँ, एक ही बगीचे में है लेकिन कहाँ गुलाब का फूल, कहाँ रतन जोत, कहाँ अक का फूल भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़ता है ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है, ये कांटों का जंगल बन गया, ये सारा वृक्ष, अभी इस कांटे के वृक्ष से फूलों की सैपलिंग, फूलों के पेड़ की सैपलिंग लग रही है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं, अपने लिए चिंतन में कहां तक फूल बनाऊं। ये भी तुम बच्चे जानते हो वो बागवान है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं, फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं, हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अगर कांटे होंगे तो फूल कैसे बनेंगे, तो हर एक समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, सचमुच हम कांटों से फूल बन रहे हैं ये समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है, किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा गृहस्थियों की बहुत समस्याएं होती है ना, उनके आगे तो बहुत बातें आती है, जिम्मेदारियां भी होती है तो बहुत बातें भी आती है, तो बाबा से कई प्रश्न पूछते हैं, अभी देखो क्या क्या पूछते हैं। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं, बाबा कहेंगे भल कराओ, अब पूछ रहा है इसका मतलब दिल तो है ना बच्चे की कराएं, तो बाबा से पूछा माना बाबा मना थोड़ी करेगा, बाबा कहेगा भल कराओ, घर में रखो संभाल करो, पूछते हैं इससे ही समझ जाता है, समझा जाता है हिम्मत नहीं है, जो उस बच्चे को भी बाबा का बनाए वो हिम्मत नहीं है, इसीलिए बाबा से पूछते हैं, अब बाबा क्यों मना करेगा, हिम्मत नहीं है, तो बाबा भी कह देते भल करो, कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर क्या बहाने देते हैं, हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी उनके हाथ का खाना पड़ेगा, वो तो पवित्र नहीं होगी तो उनके हाथ का खाना पड़ेगा, तो बाबा क्या करें, तो बाबा कहेगा भल खाओ, बाबा क्यों मना करेगा, फल खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांस ऐसे है खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। कई बार ऐसे भी समझते अभी नहीं खाऊंगा, पीछे और बूढ़ा हो जाएगा तो कौन खिलाएगा मुझे, तो अब सर्कमस्टांस ऐसे है खाना ही पड़े क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, है ना। बहू क्या आई तो कहते लक्ष्मी आई, लेकिन वो कुलक्षणी निकली वो तो पता ही नहीं चलता। पहले तो समझते लक्ष्मी आई, बहुत दहेज ले आई, बहुत कुछ लाई, परंतु वो ऐसी निकलती है लक्ष्मी तो क्या, लक्षण वाली, लक्षण तो होते ही नहीं है, वो कुलक्षणी बन जाती है सुलक्षणी की बजाय। तो बाबा कहते हैं तो कई फिर समझते हैं घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है, आजकल खुश पता नहीं चलता क्या क्या समाचार आते हैं, वो बहू कैसी होती है। तो अब ये तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, ये समझ की बात है कि अगर हमें फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। कई जगह हमने देखे सेंटरों पर कई माताएं, बुजुर्ग माताएं, वो विशेष खाना बनाती है, और फिर कई कुमार है जिनको शुद्ध भोजन खाते चाहिए तो फिर वो माता उनके लिए बनाती है और उनको टिफिन पैक करके देती है। ऐसे बहुत कर सकते, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं इसमें पूछना थोड़ी होता है, बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए, जितना जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे कल्याण के लिए बाबा परहेज बताते हैं। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, ये होगी, बाबा जानते हैं मेहनत होगी। रास्ते में भूख लगती है। अब हमारे देखो भाई बहने वरंगल से आए हैं, विजयवाड़ा से आए हैं, दो दिन तो लगे होंगे ट्रेन में, डायरेक्ट ट्रेन से आ गए तो रास्ते में तो भूख तो लगती है ना, तो खाना लेके आए होंगे, दो दिन का भी लाते होंगे। साउथ इंडिया में हमने देखा है कई प्रकार के चावल बना के लाते हैं, लेमन राइस, ये राइस, वो राइस, तो वो एक दिन ये खाएंगे दूसरे दिन दूसरा खाएंगे। बहुत कुछ परहेज रखने के कारण अपना प्रबंध कर लेते हैं क्या क्या लेके जाना है। तो बाबा कहते हैं रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, चलो बाबा कहते हैं कोई तकलीफ है तो लाचारी है तो अच्छा स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ, वो भी लाचारी है तो, नहीं तो ठेपले लेके जाते हैं मीठी कोकी, नमकीन कोकी, वो तो चलती है दो तीन दिन तो आराम से चलती है। तो लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ, ब्रेड ले सकते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, फिर इनको ही कहा जाता है योग बल, इसमें हठयोग की तो कोई बात ही नहीं है। शरीर को कमजोर भी नहीं बनाना है, धदीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी तो देनी है, पर इसमें हठयोग की बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें, जो शास्त्रों में लिखा है धदीची ऋषि ने हड्डियां दी। हाँ, वो यज्ञ में वो असुर विघ्न डालते थे तो बाबा कहते हड्डियां दी। अब वो तो सब कहानियां भक्ति मार्ग की बातें हैं, शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है, ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है, बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता, रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे, वो सदगति करने आए हैं, छोटी छोटी बातें थोड़ी पूछनी होती है। वो तो बाबा तो सदगति करने आए हैं, रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता रावण सदगति दाता होता तो उनको जलाते क्यों? तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है। कितनी ताकत थी ना, क्या क्या उसकी ताकत दिखाते हैं रावण की, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब उसकी महिमा सुनी क्या? विद्वान था, सब वेदों शास्त्रों का उसको ज्ञान था, पंडित भी था, क्या नहीं बताते, परंतु बाबा कहते फिर उसके साथ क्या क्या उनकी बातें लिख देंगी, कैसे असुर भी था, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण पांच विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनों की महिमा करते हैं ना। इस समय तो मनुष्य तो सब पतित है, उनकी पवित्रता की महिमा है साधु संतों की, रावण की तो उस प्रकार से पवित्रता की तो कोई महिमा नहीं है। इस समय के मनुष्य तो सब पतित है, तो भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं और कहते हैं बाबा से मुलाकात करें, आते हैं बाबा से मुलाकात करें, हमको बाबा से मिलाओ, बड़ा कोई व्यक्ति आया। अच्छा बाबा से मिलेंगे तो बाबा उनसे क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे उनसे? तो यही पूछेंगे ना कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुनाए। अब नए नए आते कई बार बाबा को मिलना पड़ता था, जरूरी होता था, तो बाबा उनको ज्ञान की ही बात सुनाते कि राम राज्य रावण राज्य कब सुनाए। अच्छा मनुष्य और देवता कब सुनाए? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का राज्य है, ये पूछ सकता है, पूछ सकते हैं बड़े आदमी से। मनुष्य कौन, देवता कौन, देवता किस राज्य में थे? देवता ही तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सब देवता ही हैं। तो तुम पूछ सकते हो, अभी और क्या क्या पूछ सकते हो, कि ये नई सृष्टि है या पुरानी सृष्टि है, ये भी वो वीआईपी से पूछ सकते हो। सतयुग में किसका राज्य था, ये भी पूछ सकते हो। अभी किसका राज्य है, चित्र तो सामने है ना। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते, पर उनसे पूछो उनकी बुद्धि में क्या है, इन प्रश्नों के बारे में वो क्या जवाब देते हैं, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। तो जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, ज्ञान की धारणा भी नहीं होती, हम किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, ज्ञान सुना नहीं पाते हैं, बाबा को कहते बाबा ज्ञान ये धारणा नहीं होती, तो बाबा उन्हें कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना, आत्मा के बारे में सुनाना, परमात्मा के बारे में सुनाना तो सहज है ना। अलफ बाप ही कहते हैं, मुझे मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? शिव जयंती माना शिव का जन्म, पर जन्मदिन, लेकिन कब वो भारत में आकर के उसने उसने स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, पता था क्या हम स्वर्ग के मालिक थे? कुछ भी पता नहीं था बाबा के ज्ञान से पहले, हम स्वर्ग के मालिक थे ये कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं, तो समझाने वाला तो मैं ही हूँ। शिव बाबा कहते मैं ही ये बातें समझाता हूँ, मनुष्य थोड़ी समझा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, परंतु इसका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं लोग। अब किसको कहो कि ये सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, वो कहेगा हमें नहीं पता, क्या पता सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या, परंतु इनका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परिया बनते हो ना, इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। ये कौन सी सभा? इंद्र सभा। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वाले की कोई सभा थोड़ी लगती है, इंद्र सभा, तो इंद्र माना बरसात बरसाने वाला देवता। अब इंद्र की कोई ऐसे बरसात बरसाने वाले की सभा थोड़ी लगती है। इंद्र लठ दिखाते हैं ना, इंद्र धनुष, तो इंद्र लठ सिंधी में इंद्र लठ कहते हैं, वो जैसे धनुष की तरह इंद्र लठ कहते हैं। इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं, ये सब शब्द बोलते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो और कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे फिर हमारा जन्म यहाँ इस कलयुग में फिर नहीं होगा, कहाँ होगा, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, यहाँ सब की एक ही एम ऑब्जेक्ट है प्रिंस प्रिंसेस बनने की, राजयोग है ना। हम बाबा कहते प्रजा योग नहीं है, प्रजा बनने की एम ऑब्जेक्ट नहीं है, राजा बनने की एम ऑब्जेक्ट है, राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, अब बाबा क्या करेगा, मेहनत करो पुरुषार्थ करो, क्यों नहीं बुद्धि खुलती, अब बाबा तो यही कहेगा ना। फिर अगर वो नहीं बाबा नहीं खुलती, आप कुछ जादू करो कुछ चमत्कार करो मेरी बुद्धि खुल जाए, तो बाबा क्या कहेंगे, अब ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, क्या करेंगे बाबा भी क्या करेंगे, तकदीर ही ऐसी है, तदबीर तो तुमको करनी है ना, तो इसीलिए तुमको मेहनत करनी है, अपनी बुद्धि को कैसे विशाल बनाना है, कैसे धारणा करनी है, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है तुम्हारा, अब बाबा भी क्या करेंगे। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, लेकिन पुरुषार्थ तो खुद को करना पड़ेगा ना। तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबर वार तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएंगे, बन जाएंगे क्या सब बादशाह, एक दो के ऊपर बैठेंगे क्या, हाँ बादशाह, तो सब बादशाह बन जाएंगे ऐसे तो नहीं है। कोई कहते हैं, हाँ कई आते हैं ना, कहते हैं कि आप लोगों का ज्ञान बहुत ऊंचा है, इतने आपके अंदर शुद्धि है, इतना आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आपके अंदर कोई ताकत है, ऐसे कहते हैं आपके अंदर कोई ताकत है। तो कोई कहे ईश्वरीय ताकत है, तो फिर तो ईश्वरीय ताकत है, ये तो इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि एक एक को बैठ के भगवान ताकत दे रहा है, आप पुरुषार्थ करते हो उसकी ताकत है। परंतु अगर भगवान के पास ईश्वरीय ताकत होती तो फिर सबको बादशाह बना देता, पर सब तो बादशाह बनेंगे नहीं, ईश्वरीय ताकत है तो जादू की छड़ी फेर दे सब बादशाह बन जाए, लेकिन या तो हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। तो फिर बाबा कहते, कोई कहते कि ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी, अब सबको बाबा ये जादू की छड़ी घुमा दे सब राजा बन जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। ये समझ की बात है ना, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं, अंग्रेजों के जमाने में टाइटल देते थे, पैसा बहुत होता था तो टाइटल ले लेते थे, अंग्रेज उनको टाइटल दे देते थे महाराजा का, अब महाराजा का टाइटल तो उसको मिल गया, नहीं वो नहीं था कोई राज्य नहीं था उसको, पर महाराजा का टाइटल मिल गया, अब महाराजा का टाइटल तो मिला लेकिन लक्षण तो जरा भी नहीं। ये राजा के लक्षण कैसे होते हैं, वो रॉयल्टी होती है, बहुत कुछ होता है, वो लक्षण नहीं है, महाराजा का टाइटल मिल गया। तो बाबा कहते हैं अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो लाख ऐसे देने से राजा रानी का लकब मिल जाता है, उनको ये टाइटल मिल जाता था। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े ना, वो रॉयल्टी चाहिए, कई ऐसे बाबा राजाओं से मिलते थे, बाबा का तो उठना बैठना राजाओं के साथ भी था, सब राजाओं के पास बाबा जाते थे ना, क्योंकि जेवर बेचते थे, हीरे जवाहरातों के जेवर कोई साधारण मनुष्य थोड़ी खरीदेंगे, तो बाबा को वो राजा महाराजा कहते थे। हाँ बता होगा, महाराजा क्या क्या कहते थे, भगवान ने बड़ी भूल की, भगवान को आपको महाराजा बनाना चाहिए था, क्योंकि आपके अंदर इतनी रॉयल्टी है, हर बात की रॉयल्टी थी बाबा के अंदर, लेकिन भगवान ने भूल करके हमको राजा बना दिया और आपको एक व्यापारी बना दिया। तो बाबा कहते थे भगवान भूल नहीं कर सकता है, भूल करके हमको व्यापारी बनाया कैसे, नहीं है ना, ये तो ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं फिर चाल भी तो ऐसे रखनी पड़ेगी, अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं, सत्युग को भूल गए हैं, क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या, सांवरा दिखा दिया ना श्री कृष्ण को, फिर गीत बना दिया, हाँ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हाँ तो राधा को भी काला दिखाना चाहिए, गोरा वो तो उसको तो गोरा दिखा दिया और श्री कृष्ण को सांवरा दिखा दिया। लेकिन बाबा कहते नाम तो एक का ही लेंगे ना, श्याम सुंदर तो एक को ही कहेंगे, जो वो तो हीरो एक्टर है, श्री कृष्ण तो हीरो एक्टर है सारे ड्रामा में, इसलिए एक को ही श्याम सुंदर का, लेकिन सब आत्माएं सुंदर से श्याम बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अब देवताएं काले होते हैं क्या, श्री कृष्ण को सांवरा और राधे को गोरा दिखाते हैं, अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना, फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं, वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, सत्युग में है सुनहरी दुनिया के मालिक, गोल्डन दुनिया के मालिक, और ये है कलयुग माना काली दुनिया, कलयुग कल माना कलह क्लेश, कल माना लोहा, हाँ जो मशीने उसको भी कल कहते ना, तो ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दूसरा दैवी गुण भी धारण करनी चाहिए। कोई कहते हैं अब देखो और क्या कहते हैं बाबा को, कोई कहते हैं बाबा बीड़ी छूटती नहीं, हंसी की बात है ना, सिगरेट पीते हैं आजकल तो सिगरेट है बीड़ी, पहले तो बहुत बीड़ी पीते थे गाँव गाँव में, बीड़ी बीड़ी अब बीड़ी तो वो बीड़ी बहुत फेमस होती थी, तो बाबा को उस समय बीड़ी फेमस तो थी, तो बाबा को कहते बाबा ये बीड़ी नहीं छूटती है, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो बहुत पियो बाबा, अभी बाबा ने तो परेश मुरली में बता दिए, तो बाबा बीड़ी नहीं छूटी, तो बाबा क्या छू मंतर करके जादू की छड़ी घुमाएंगे और बीड़ी छूट जाएगी, कहीं तो आपको परेश रखनी है ना। पर हमने देखा है कि ये जो व्यसन मुक्त अभियान जो निकले हैं उसमें बहुत बहुत सफलता मिली है, कैसे वो सहज उनका सब व्यसन छूट जाता है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो, पूछते हो तो क्या कहेंगे बाबा, नहीं 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 तुमको नहीं पीनी है नहीं पीनी है, बाबा ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा कहेंगे खूब पियो, परहेज में नहीं चलने से तो गिरोगे, अब नहीं चलना है परहेज इसलिए पूछ रहे हो, नहीं कर सकते पूछ रहे हो, अगर कर सकते होते तो पूछते भी नहीं, तो परहेज में नहीं चलने से गिरोगे, खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना, हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा, गुस्सा आता रहे, लोभी होते रहे, मोह के कीड़े बनते रहे, अभिमान में चलते रहे, हम देवता बन रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, तो अपने आप को खुश करना होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ हम देवता बनते तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए, सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे, अच्छा अपने को देखो ऐसे गुण है हमारे में जो हम लक्ष्मी या नारायण को वरेंगे। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? तब कोई के बीड़ी भी पीना है नारायण भी बनना है, कैसे बनेंगे? हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना, नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त माना नारद है, धारणा है नहीं, परंतु हाँ लक्ष्मी बनेंगे हम नारायण बनेंगे कहते हैं। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त या नारद है। तो बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। जैसे नारद को भी ब्रह्मा का बेटा दिखाते ना, तो ब्रह्मा के बच्चे तो बन गए लेकिन नारद मिसल है तो क्या लक्ष्मी या नारायण को वरेंगे? तो बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अब क्या करें, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। कैसे परिवर्तन आएगा? अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। गुस्सा करना, गालियां देना, लड़ना, झगड़ना, क्या क्या बोलना। तो बाबा कहते देवताएं तो ऐसे करते नहीं है, तो वो क्वालिफिकेशंस है नहीं और देवता कैसे बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब तो पी नहीं सकते, बीड़ी पी नहीं सकते, विकार में जा नहीं सकते, पतित के हाथ का खा नहीं सकते। अब बताओ ये सब नहीं कर सकते, पतित के हाथ का खा नहीं सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, ये नाटक है, सब पाठधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती है हाँ पाठ बजाने, अब पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। जितनी भी आत्माएं हैं सब एक्टर्स पाठधारी है, सबको पाठ बजाना है, सबका अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी है, 800 करोड़ इस समय दुनिया की आबादी ऐसे कहते हैं, तो कितने पाठधारी है, कैसे पाठ बजाते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे। अब आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ निकलता है तो उसमें सारे आम ही होंगे ना, ऐसे केला भी लगेगा, चीकू भी लगेगा, नहीं केवल आम ही लगेंगे। लेकिन ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, झाड़ तो है परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, शिव बाबा इसका बीज है, इस वैरायटी धर्मों के झाड़ का बीज एक ही है। मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। ये बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है, थोड़े रोज है, ये समझ तो सब में है ना, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले मौफिक सैपलिंग लगती रहती है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। राजा रानी का केवल सैपलिंग नहीं है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा सबकी ही सैपलिंग है। ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी, ब्राह्मण का ही ऐसे ना, सुनी न सुनी मुरली। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है, चलो बाहर है मुरली नहीं सुनी कोई कारणवश तो समझ सकते, पर यहाँ बैठे भी मुरली सुनते हुए भी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ऐसे भी है कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, तो सुनना चाहिए ना। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। उस समय टेप मशीन बहुत महंगी होती थी, तो बाबा को किसी ने टेप मशीन प्रेजेंट की और बाबा ने मुरली चलाई और वो टेप में भर गई। पहली टेप मशीन बाबा ने देखी तो आवाज भर गया, तो बाबा को कहा, बाबा आपने जो कुछ कहा यहू बहु ऐसे ही आवाज ऐसे ही रिपीट करेगा। कहा अच्छा, तो बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा, अरे ये तो मेरा बहुत बहुत सर्विसेबल बच्चा है। तो उस समय विश्व रतन दादा को बुलाया कि आप विश्व रतन अभी ये टेप मशीन सब बड़े बड़े सेंटरों पर ले जाओ और सबको बाबा की आवाज सुनाओ। फिर तो एक एक ने टेप मशीन मंगाई, तो बाबा ने कई टेप मशीन मंगाई, बड़े बड़े सेंटर्स को भेजी। अभी तो वो बात नहीं है, लेकिन उस समय की। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। एक साहूकार खरीद करे और सेंटर को देवे तो उनसे फिर कई गरीब बाबा की आवाज सुनेंगे, मुरली डायरेक्ट सुनेंगे, तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। अब गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, करते थे उस समय 1 रुपए की एक ईंट होती थी या 2 रुपए की, बाबा मेरी एक ईंट लगा देना 2 रुपए का मनी ऑर्डर। तो गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, ऐसे भी कहते थे। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना, अब 1 रुपया डालेंगे, यज्ञ तो बहुत बड़ा है तो हुंडी भरने वाला भी होगा माना, और ज्यादा देने वाले भी होंगे। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, है ना, टाटा कितना मदद करता है, टाटा ये सारी जितने भी है बड़े बड़े बिजनेस वाले वो सब उद्योगपति मदद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है, चलो मदद भी करते हैं, उनको क्या मिलता, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए करते हो। देखते हो बाबा ने सब कुछ किया, सब कुछ बाबा ने किया, पहला बीज तो बाबा ने बोया अपने तन मन धन का। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना, 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। इतनी प्राप्ति होती है, विश्व का मालिक बनते हैं तो ऐसा सौदा क्यों नहीं करेंगे, हाँ कौन क्यों कौन नहीं करेगा। भोला नाथ तब तो कहते हैं ना, हम देते क्या है और बाबा कितना देता है, तो बाबा कहते भोला नाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो, कितनी गरीब बच्चियां हैं सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है, सिलाई कर पेट पालती है और बाबा की भंडारी में डालती है, बहुत गरीब है। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम ये बातें नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तो बाप कहते हैं मैं भोला नाथ भी हूँ ना। शिव बाबा कहते हैं मैं भोला नाथ भी हूँ ना, ये दादा भोला नाथ नहीं है। बाबा कहते हैं ये दादा भोला नाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोला, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा भोला नाथ है, इसके इसलिए उनको सौदागर रत्नागर जादूगर भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा नहीं है, वो है सौदागर रत्नागर जादूगर। तुम विश्व का मालिक बनते हो, यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, हाँ भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है, भारत स्वर्ग था उसकी निशानियां क्या है, सोमनाथ का मंदिर, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, कैसे सोमनाथ मंदिर को कितना लूटा, क्या क्या उनके लिए बताते, 17 बार ऊंट भर भर करके इतना हीरे मोती सोना सब लेके गए। तो क्या बताते इतिहास में, सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर करके हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अब ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जो करेगा सो पाएगा। बाबा सीधी बात कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, तुम हो ईश्वर के मुरीद। ईश्वर के मुरीद माना जो ईश्वर कहेगा वही हम मानेंगे, उनके मुरीद है हम, माना उनके कहने अनुसार ही चलेंगे। बाकी सब है रावण के मुरीद, वो रावण के कहने पर चलते हैं। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। भगवान की श्रीमत है, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं, क्या बातें करो अपने आप से, जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी हो, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, ये सब अपने अंदर जांच करनी है। अंतर्मुखी बन। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं दो। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, हमारे दो स्वरूप है, कौन से, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, और दोनों स्वरूप कैसे है वो बाबा ने बताया। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि स्वरूप है देवता स्वरूप और अनादि स्वरूप है आत्मिक स्वरूप। तो बाबा कहते उसकी स्मृति लाओ। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वो आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि क्यों सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हम वास्तविक आत्मा, हम वास्तविक, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। तो अनादि आदि और वर्तमान ये सब पवित्र है स्वरूप, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है, पवित्र है वही योगी है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। कई कहते ना, मैं तो बहुत सहज योग है, सहज सब सहज, लेकिन सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मन मत कभी पर मत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुखता से मुक्त होंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी। आज 17 तारीख है। फरमान बरदार के गुण से परमात्म स्नेह की शक्ति से संपन्न थी मम्मा। फरमान बरदार के गुण से परमात्म स्नेह की शक्ति से संपन्न मम्मा सदा बाबा के एक एक फरमान को पालन करके फरमान बरदार बनकर रही। इसी गुण से वे परमात्म स्नेह की पात्र बनी, दिल तख्त नशीन बन गई। बाबा का कहना और मम्मा का करना, जैसे मिलिट्री वालों को अपने कमांडर का हर फरमान उसी समय पालन करना होता, ऐसे मातेश्वरी जी सदा जी हजूर जी हाजिर करके परमात्म स्नेह की पात्र बन गई। ऐसे हम सबको भी परमात्मा पिता के हर फरमान को पालन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी बैठे रहेंगे, बहुत बड़ी सूचना आपको देनी है। हमारे रवि भाई आए हैं, आप सुनाओ।
आप करें?
नहीं नहीं, अब हमारे रवि भाई आए हैं, बहुत बड़ी आपको सूचना दे रहे हैं। पहले पढ़ के सुनाएंगे, फिर कुछ प्रतिज्ञा भी कराएंगे, इसीलिए सब बैठे रहे।
ओम शांति। जैसे कि आदरणीय बहन जी ने बताया, एक विशेष सूचना आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं, या कहे स्रोत होते हैं, जो बहुत सीमित होते हैं, जिसके संरक्षण के लिए हमें जागृत रहने की आवश्यकता होती है। पर जहां कहीं हमारी जागरूकता ढीली दिखाई देती है, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, या कहे हमारे ही घर का जो मैनेजमेंट है, मधुबन मैनेजमेंट, हर जगह से हमको एक जागरूकता की अनुभूति कराई जाती है और अवेयरनेस लाई जाती है। ऐसे ही जल एक ऐसा विषय है, हम जानते हैं कि अनेक स्थानों पर जल की कमी होती है, उसके कई कारण होते हैं। अभी वर्तमान समय माउंट आबू में भी पानी की काफी कमी है। अभी आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को अटेंशन दिलाया जाता है कि जल थोड़ा संभल कर यूज करें, जल को बचाएं। तो अभी कुछ समय से हम जानते हैं भारत सरकार ने एक विशेष मंत्रालय भी बनाया, जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि जल के संरक्षण की बहुत अति आवश्यकता है। और आप सबको पता हो 1993 से लेकर के एक शुरुआत की गई, 22 मार्च को जल संरक्षण, विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी जागृति को लाने के लिए एक और अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका नाम है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जल जन संरक्षण अभियान। इसके अंतर्गत सरकार तो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे धरोहर के रूप में बड़े बड़े स्रोत है, चाहे शहरों में बड़े बड़े स्थानों पे जल के बड़े बड़े स्रोत है, चाहे कुएं हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, उनका संरक्षण करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अपने पर्सनल रूप में एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं और इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अभी हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने जाएं नहीं, दो मिनट के लिए बैठें और अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, अपना हाथ आगे करते हुए, राइट हैंड आगे करते हुए आ जाओ। यानी भैया हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप सभी दोहराएंगे। बहन जी के उस तरफ खड़े हो जाओ, हाथ आगे करके। जी जी, हम अभी मैं संकल्प लेता हूं कहूंगा, बहने लेती हूं अपने आप कह देना, जल का संरक्षण करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण के और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। नलों, टंकियों या पाइपों से होने वाले जल रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण, हरियाणा राजस्थान, स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन, इस अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हम सब दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद भट्ठी वाले सब बैठे रहेंगे, जो भी भट्ठी में आए हैं। आप लोगों को कई सूचनाएं देनी है, कोई भी उठेंगे नहीं, सब बैठे रहेंगे। योग के बाद भट्ठी वाले भाई बहने।
ओम शांति। योगम तर्वाता वरंगल।